नारद मुनि से उनकी भेंट हुई है और नारद मुनि उनकी परीक्षा लेते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार अब उनका समय नहीं हुआ है तपस्या करने के लिए, जब उपयुक्त समय आएगा तब ध्रुव महाराज भगवान को संतुष्ट करने के लिए तपस्या व्रत आचरण कर सकते हैं। और संसार में सुख दुख के संबंध में भी नारद मुनि बता रहे हैं कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों स्थिति में संभाव पोषण करना चाहिए, यह समझकर कि जो सुख और दुख आते हैं वो उनके पूर्व जन्मों के कर्म फल हैं और भगवान उस कर्म फल को देकर हमारे पाप को दुख देकर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और जो सुख प्रदान करते हैं उससे हमारा पुण्य भी कम होता जाता है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, दुखे सुनोद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीम निरुच्यत। वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि संपन्न हो सकता है और जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है जब वह दुख में विचलित नहीं होता है और सुख में अत्यधिक आनंदित नहीं होता है। दोनों परिस्थितियों में वो संभाव पोषण करता है। तो वही बात नारद मुनि भी ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज विमाता के अपमान से दुखी थे और यही कारण था कि वो गृह त्याग करके भगवान को संतुष्ट करने आए हैं तपस्या के द्वारा, जिससे भगवान से वरदान प्राप्त करेंगे। और विमाता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। तो ये प्रतिशोध की जो भावना, ये विमाता के अनिष्ट करने की भावना से नहीं है, किंतु विमाता ने जो कहा है कि वो अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकते, अब ध्रुव महाराज अपने पिता के राज सिंहासन से भी उच्च आसन की कामना कर रहे हैं। ये उनके बाल सुलभ जो मन है, उस मन में वो दृढ़ संकल्प हो चुके हैं कि उनको अब पिता का राज्य नहीं चाहिए, राज सिंहासन नहीं चाहिए, अब उनको ऐसा राज्य चाहिए जिस राज्य को उनके पिता का, उनके पितामह और प्रपितामह ब्रह्मा ने भी भोगा नहीं हो। इस प्रकार दृढ़ संकल्प को लेकर ध्रुव महाराज घर से निकले हैं। तो उनको समझा रहे हैं नारद मुनि कि वस्तुतः ध्रुव जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो भी सुख दुख आता है उसको सहन करना चाहिए, और विशेष रूप से संसार में लोगों से इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। तो नारद मुनि कहते हैं कि गुणाधिकान मुदंग लिप्सेत। यदि कोई व्यक्ति हमसे गुणों में अधिक है तो साधारण रूप से हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम ऐसे व्यक्ति को स्वागत नहीं कर सकते, और किस प्रकार उस व्यक्ति का अनिष्ट हो उसके लिए प्रयास करते हैं। हम जिसके प्रति ईर्ष्या करते हैं उस व्यक्ति का तो कुछ होता नहीं है, जो व्यक्ति ईर्ष्या परायण है वो हर समय अपने मन में जलता रहता है, उसी को कष्ट होता है। किंतु संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने से अधिक गुण संपन्न व्यक्ति को, व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या परायण हो जाता है। इसलिए मानसिक शांति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को गुणाधिकान मुदम लिप्सित, हमसे यदि कोई अधिक गुण संपन्न है तो उसके प्रति ईर्षाभाव पोषण करने के स्थान पर हमें आनंदित होना चाहिए कि चलो हम में वो गुण नहीं है, इस व्यक्ति में ये गुण है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। उससे वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, हम भी प्रसन्न होंगे, और उस व्यक्ति के प्रति ईर्षा परायण होने से हम ही दुखी होंगे, हम ही मन ही मन जलते रहेंगे उसके प्रति, उस व्यक्ति का कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कैसे जीवन में व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, तो अपने से अधिक गुण संपन्न व्यक्ति के प्रति हम हर्ष व्यक्त करें, आनंद व्यक्त करें। अनुक्रोशम गुणाधमात, और जो हमसे गुणों में कम है, अधिक गुण संपन्न नहीं है, साधारण रूप से हम क्या करते हैं, उसके प्रति उपहास की भावना रखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, वो नहीं जानता है, ये नहीं कर सकता। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हमसे जो गुणों में कम है उसके प्रति दया भाव पोषण करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार उस व्यक्ति का हम कुछ उपकार कर सकते हैं दया भाव प्रदर्शन करके, और वह व्यक्ति सुखी हो सकता है, हम भी सुखी हो सकते हैं। और फिर कह रहे हैं मैत्रं समानात् अन्विच्छन् ताप न तापैर अभिभूयते, और जो लोग हमारे समान गुण संपन्न है अर्थात हमारे समकक्ष है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, न मैत्री भाव रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए, इससे हम भी प्रसन्न होंगे और वो व्यक्ति भी प्रसन्न होगा। तो यदि हम ऐसे तीनों प्रकार के जो लोग हैं उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार करें तो न तापैर अभिभूयते, तो नारद मुनि कहते हैं वो व्यक्ति संसार का जो ताप है, जो जलन है, कष्ट है, उससे अभिभूत नहीं होगा, वो शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकेगा। तो इसका अर्थ है कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को शांति का उपाय बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज अशांत है, विमाता के द्वारा अपमानित होने के कारण वो अशांत की स्थिति में है, और कैसे शांति प्राप्त कर सकेंगे इसका उपदेश दे रहे हैं। अब ध्रुव महाराज नारद मुनि से कह रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि तो पहले उनकी परीक्षा ले रहे थे कि एक इतने दृढ़ संकल्प हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और उसके बाद पुनः जीवन में शांति प्राप्ति का उपाय भी बता रहे थे। तो अब ध्रुव महाराज कह रहे हैं स्वयं समूह भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शित कृपया पुंसं दुर्दोष अस्मद विधेयस्तुया। बच्चों को संभाल, तो नारद मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं ध्रुव महाराज, कहते हैं कि हे महात्मन, आपने जो शांति का उपाय प्रदर्शित किया है, जीवन में किस प्रकार मनुष्य शांति को प्राप्त कर सकता है, ये उपाय जो सुख दुख में अधीर होते हैं उनके लिए बहुत उपकारी है। और आपने कृपा करके सुख दुख में मोहित लोगों के लिए शांति का उपाय प्रदर्शित किया है, किंतु मैं जो आपके इस उपदेश को मैं ग्रहण करने में समर्थ नहीं, मैं अपने असमर्थता व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ध्रुव महाराज कहते हैं मैं इसलिए असमर्थ हूं, ये मेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और क्षत्रिय का रक्त प्रवाहित हो रहा है मेरे शरीर में, और क्षत्रिय युद्ध भूमि में अस्त्रों को, शत्रु के अस्त्रों को सहन कर सकता है, किंतु किसी के वाक्य वाण को सहन नहीं कर सकता। और हमारी स्थिति यह है कि अथापि ते अभिनीतस्य क्षत्रं घोरं उपयुषः, तो इसलिए मैं आपके उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं, ये क्षत्रिय कुल में जन्म होने का दोष है। मैं क्या करूं, आप तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इस उपदेश को ग्रहण कर सकता है, किंतु मैं ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं अविनीत बना हुआ हूं, क्योंकि आपके उपदेशों को पालन नहीं कर पा रहा हूं, उसका उल्लंघन कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि सुरुच्या दुर्वचो वाणी न भिन्न सहते, कि विमाता सुरुचि के जो वाक्य वाण है वो वाक्य वाण अभी तक हमारे हृदय में अभी तक घुसा हुआ, अभी वो निकल नहीं पाया वो वाक्य वाण, अर्थात मैं हर समय हर पल विमाता के उस दुर्वचन को स्मरण करता और मैं चाहता हूं इसके लिए कुछ करना है मुझे, कैसे इस वाक्यवाण का मैं प्रतिशोध लूंगा और भगवान को संतुष्ट करके किस प्रकार मैं ऐसे उच्च आसन या पद को प्राप्त करूंगा जिससे विमाता ने जो कहा है कि उसके गर्भ से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, अपने पिताजी के राज्य या राज सिंहासन को प्राप्त होने के लिए, तो मैं विमाता को दिखा देना चाहता हूं कि मुझे पिताजी का राज्य सिंहासन नहीं चाहिए या उनके गर्भ से मुझे जन्म होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो पिताजी के राज्य से उच्चतम राज्य की कामना करता हूं, और वह संभव है जब भगवान कृष्ण को मैं संतुष्ट कर पाऊंगा तपस्या के द्वारा, क्योंकि भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं। तो अब ध्रुव महाराज व्यक्त कर रहे हैं अपनी अभिलाषा को, इच्छा को नारद मुनि के समक्ष, कहते हैं कि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमान, के मुनिवर मुनिश्रेष्ठ मेरी यही कामना है कि पदं त्रिभुवन उत्कृष्टम, मैं त्रिभुवन स्वर्ग मर्त पाताल ये तीनों लोकों से उत्कृष्ट पद की कामना करता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक संसार में लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, सभी जानते हैं कि स्वर्ग में सुख अधिक प्राप्त होता है, देवता लोग स्वर्ग में अधिक सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए हम भी स्वर्ग की कामना करते हैं। जब कभी लोग पुण्य कर्म करते हैं उनमें यही अभिलाषा होती है कि पुण्य कर्म करने से वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, और इसी कामना से संसार में किस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु संसार में होती है हम कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया, अर्थात वो उत्तम स्थिति को प्राप्त हो गया। किंतु हमें ये पता नहीं है कि वह व्यक्ति स्वर्ग में गया या नरक में गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त होता है, और स्वर्ग की गति हर व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है, ये व्यक्ति के पुण्य फल पर निर्भर करता है। यदि कोई पापी व्यक्ति है, जीवन सारा जीवन बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो उसको स्वर्ग गति कैसे हो सकती है? उसका स्वर्गवास नहीं होता, उसका नरकवास होता है। तो ये ध्रुव महाराज चाहते हैं कि उनको स्वर्ग सुख की कामना नहीं है, और स्वर्ग सुख को छोड़ दीजिए, स्वर्ग से भी उच्चतर लोक हैं ब्रह्मलोक, जो ये त्रिभुवन में सर्वोत्कृष्ट लोक है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उसको ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी लोक जो है ये बीचों बीच है, ऊपर और 6 लोक हैं। पृथ्वी को भूलोक कहा गया है, उसके ऊपर भूवरलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और अंतिम लोक है ब्रह्मलोक या सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। और पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोक है, ये 7 लोक है पृथ्वी के नीचे, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब 7 लोक है नीचे। अब ध्रुव महाराज त्रिभुवन से उत्कृष्ट लोक की कामना करते हैं, अर्थात ब्रह्म लोक से भी उच्चतर लोक की कामना कर रहे हैं, जबकि ब्रह्म लोक से कोई उच्चतर लोक है नहीं संसार में, सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक ही है, उसके ऊपर और कोई लोक नहीं है ब्रह्मांड में। किंतु ध्रुव महाराज ऐसे कामना कर रहे हैं जिस लोक को ना तो उनके पितामह स्वयं मनु ने भोग किया है, ना उनके प्रपितामह ब्रह्मा ने भी भोग किया है, अर्थात ब्रह्मलोक से भी उच्च लोक की कामना कर रहे हैं ध्रुव महाराज। और यह कामना असंभव कामना है, यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक से ऊपर कोई लोक ही नहीं है। किंतु ध्रुव महाराज ऐसे लोक की कामना कर रहे हैं, ये बड़ा विचित्र बात है। तो कहते हैं कि पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम ब्रूही अस्मत् पितृभि ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम्। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे मुनिश्रेष्ठ, हम ऐसे त्रिभुवन से उत्कृष्ट लोक की कामना करते हैं जिस लोक को मेरे पितृ ही, हमारे पितृ पुरुष, उनके पितामह स्वयंभू मनु और प्रपितामह ब्रह्मा, इन लोगों ने जिस लोक को प्राप्त नहीं किया, अनधिष्ठितम, ये अधिष्ठित नहीं हुए होंगे उस लोक में, मुझे ऐसा लोक चाहिए। अब मुझे पिता का राज्य नहीं चाहिए और पितामह स्वयंभू मनु का राज्य भी नहीं चाहिए और प्रपितामह ब्रह्मा का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे उनसे उच्चतम लोक चाहिए। 5 वर्ष के बालक ध्रुव इस प्रकार दृढ़ संकल्प लेकर नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे मार्ग प्रदर्शन के लिए मैं कैसे इस श्लोक को प्राप्त हो सकूं। और ध्रुव महाराज कोई छल कपट से ये लोक को प्राप्त करना नहीं चाहते। कभी कभी लोग असंभव कामना करते हैं और चाहते हैं कि छल कपट से प्राप्त हो जाए, किंतु ध्रुव महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि हे देवर्षि, आप कृपा करके ऐसा मार्ग बताइए साधु वर्तों में, ये साधु मार्ग मुझे बताइए, सतमार्ग मुझे प्रदर्शित कीजिए। मैं ऐसे लोग की कामना करता हूं और साधु मार्ग में जाकर, सतमार्ग में जाकर, असत मार्ग में नहीं। संसार में लोग असत मार्ग में चले जाते हैं, धन कमाने के लिए, कोई किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, किंतु ध्रुव महाराज असत मार्ग में नहीं जाना चाहते। वो सत मार्ग में जाकर ऐसे लोग को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि असंभव कामना है, संभव नहीं है। ऐसा लोक की स्थिति भी नहीं है ब्रह्मांड। तो कहते हैं नूनं भवान भगवतो जो अंगज परमेष्टिन विनोदन अटते वीणं हिताय जगतोर्क। अब ध्रुव महाराज, क्योंकि पहले नारद मुनि के उपदेश को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और अपने को अविनीत माने हैं, क्योंकि जो गुरुजनों के आदेश का पालन नहीं करता है वो विनम्र स्वभाव युक्त नहीं होता है, वो धृष्ट स्वभाव युक्त होता है। इसलिए ध्रुव महाराज उसके लिए पश्चाताप भी कर रहे हैं कि नारद मुनि के उपदेशों को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः जब अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए ध्रुव महाराज नारद मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी कृपा की भिक्षा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो परमेष्टि ब्रह्मा है उनसे आप उत्पन्न हुए हैं, उनके पुत्र हैं, नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और आप ब्रह्मा जी के पुत्र होकर सारे जगत में आप वीणा वादन करते हुए भ्रमण करते हैं, किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए। तो आप कृपामय हैं, अन्यथा ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा भ्रमण करता रहेगा सारे ब्रह्मांड में। तो नारद मुनि ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बद्ध जीव पर कृपा प्रदर्शन करने के लिए सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, बिना वादन करते हैं। और भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का प्रचार करते हैं, नाम का प्रचार करते रहते हैं, और इस प्रकार बद्ध जीवों के उद्धार के लिए मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी एक बद्ध जीव हूं और मुझ पर आप कृपा प्रदर्शन कीजिए, मुझे मार्ग प्रदर्शन कीजिए। जगत तो अर्क वत कह रहे हैं, अर्क अर्थात सूर्य, जैसे सूर्य उदित होते हैं जगत के कल्याण के लिए। आप कल्पना कीजिए यदि कल से एक वर्ष तक सूर्य उदित नहीं होंगे, संसार का क्या होगा, संसार की अवस्था क्या होगी? तो हम अगर दो चार दिन बारिश होता है सूर्य उदित नहीं होते, हम सोचते हैं कब सूर्य उदय होंगे। तो जगत के कल्याण के लिए सूर्यदेव उदित होते हैं, उनके बिना संसार में चारों ओर अंधकार छा जाएगा। इसलिए सूर्य की आवश्यकता है। उसी प्रकार ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि नारद मुनि सूर्य के समान इस जगत के कल्याण के लिए भ्रमण करते रहते हैं, उनके बिना सारे जगत में अज्ञान अंधकार छा जाएगा। क्योंकि जो भक्तजन होते हैं भगवान के, ये भ्रमण करते हुए भगवान के संबंध में ज्ञान वितरण करते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं, जिससे कि हम भगवान को जान सकते हैं और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को भी जान सकते हैं। तो साधुजन भक्तजन जो संसार में भ्रमण करते हैं, ये अपने लिए भ्रमण नहीं करते, ये जगत के कल्याण के लिए स्वयं भ्रमण करते हैं। इसलिए कहा गया कि साधु अपने लिए जीवन धारण नहीं करता, वो दूसरों के लिए जगत के कल्याण के लिए जीवन धारण करता है, अन्यथा साधु का जीवन धारण करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो भगवान जिस प्रकार जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा चिंता करते रहते हैं, कैसे जगत का कल्याण हो, लोग दुखों से मुक्त होकर भगवान के पास आए, तो उनके भक्तजन भी यही चिंता करते रहते हैं और सारे जगत में भ्रमण करते रहते हैं बद्ध जीवों का उद्धार के लिए। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि से कहकर उनकी कृपा को प्राप्त होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नारद मुनि परम शक्तिशाली है, भगवान के समान शक्तिशाली है, और यदि वह वरदान प्रदान करते हैं तो ध्रुव महाराज अपने कार्य में सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। तो कहते हैं इति उदाहृतं आकर्ण भगवान नारदस्तदा प्रीत्य प्रत्याहं तो बालं सह वाक्यं अनुकंपया। तो जो नारद मुनि ने सुना ध्रुव महाराज के अनुरोध या निवेदन, तो वो समझ गए कि ये ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने पहले जो परीक्षा ली थी ध्रुव महाराज, उनको कहा था कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अब घर चले जाओ, जब उपयुक्त समय आने पर तुम भगवान के लिए तपस्या करना। किंतु ध्रुव महाराज इससे विचलित तो नहीं हुए नारद मुनि की बातों से। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आपको यदि मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप यदि मुझ पर कृपा करेंगे और मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं तो आप मार्ग प्रदर्शित कीजिए। इसलिए वो अनुरोध कर रहे हैं नारद मुनि से। अब वो घर को लौट कर जानने के लिए सोच नहीं रहे है नारद मुनि ध्रुव महाराज। तो जब नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव महाराज दृढ़ संकल्प हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो नारद मुनि के हृदय में ध्रुव महाराज के प्रति दया उत्पन्न होगी और वो ध्रुव महाराज की सहायता के लिए अब नारद मुनि कुछ करना चाहते हैं। यही साधु पुरुष की दया है। जब व्यक्ति उनके चरणों में निवेदन करता है कृपा के लिए और दृढ़ संकल्प है भगवान को प्राप्त होने के लिए, और भगवान को प्राप्त होने के लिए जो तपस्या की आवश्यकता है उसको करने के लिए भी प्रस्तुत है, तो यहां हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज केवल कृपा की भिक्षा नहीं कर रहे थे। जैसे आजकल लोग किसी साधु से मिलते हैं, साधु महाराज थोड़ा कृपा कर दीजिए, किंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ संकल्प की संकल्प का होना यह आवश्यक है व्यक्ति में, तब वो कृपा के योग्य बन सकता है। दृढ़ संकल्प होना और भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या का आचरण करना, कष्ट त्याग सहन करने के लिए प्रस्तुत होना, तब जाकर कृपा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। साधुओं की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। बिना कुछ किए, बिना परिश्रम किए केवल कृपा मांगने से नहीं मिलता, कृपा नहीं मिलती, क्योंकि लोग आजकल सरल उपाय देखते हैं। यह सत्य है कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, यदि किस पर साधु की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है या भगवान की कृपा होती है, तो भक्ति लता बीज को वो प्राप्त करता है। तो ये कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कैसे गुरु से हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो व्यक्ति गुरु साधु के पास जाएगा प्रणिपात पूर्वक, विनम्रता पूर्वक प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए और सेवा करते हुए। साधु की सेवा करना आवश्यक है। जब हम साधु की सेवा करेंगे विनम्रता पूर्वक, साधु को कोई आह्वान करते हुए या चैलेंज करते हुए नहीं, आप कहते हैं भगवान है, यदि भगवान है हमें दिखा दीजिए। कभी कभी लोग ऐसे साधुओं को प्रश्न करते हैं, तो ऐसे कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं विनम्रता पूर्वक साधु गुरु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछना चाहिए भगवान के संबंध में। जब साधु महात्मा गुरु देखेंगे कि ये दृढ़ संकल्प संपन्न है, ये विनम्रता से युक्त है, भगवान को जानने के लिए इसमें आग्रह है, तब वो उसको सत उपदेश प्रदान करते हैं। भगवान के संबंध में या भगवान को प्राप्त होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, यही साधु की कृपा। तो ध्रुव महाराज प्रस्तुत थे नारद मुनि के आदेश के अनुसार भगवान को प्राप्त होने के प्रयास करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम जाते हैं गुरु साधुओं के पास, उनसे प्रश्न तो पूछते हैं कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, और गुरु या साधु वैष्णव जब कहते हैं, कुछ उपदेश देते हैं करने के लिए, हम उसका पालन नहीं करते। जब हम गुरु साधु का उपदेश पालन नहीं करेंगे तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विनम्रता का अर्थ है कि गुरु साधु जो उपदेश प्रदान करेंगे उसको पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प होना। यदि हम उपदेशों को पालन नहीं करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब ध्रुव महाराज प्रस्तुत हो गए हैं, नारद मुनि जो उपदेश देंगे उसको पालन करेंगे, और वो चाहते हैं शीघ्रातिशीघ्र, अति शीघ्र भगवान को प्राप्त होने के लिए। जैसे मुनि ऋषि लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ध्रुव महर्ष ऐसी तपस्या करना नहीं चाहते, वे चाहते हैं अति शीघ्र कैसे भगवान की कृपा वो प्राप्त हो जाए। नारद मुनि उसी प्रकार उपदेश दें, इसलिए वो जो भी उपदेश देंगे उसको पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प को ग्रहण किए हुए। तो नारद मुनि ने जब देखा ध्रुव महाराज का संकल्प तो उनके प्रति वो दयाशील हो गए, कृपा करने के लिए उद्यत हो गए। अब नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं ध्रुव महाराज, कहते हैं जनन न्याभिहित पंथ सभी निःश्रेयस्यते। ये ध्रुव, तुम्हारे जीवन का परम कल्याण, परम लक्ष्य तुम प्राप्त हो सकेगे तुम्हारी माता ने जो उपदेश दिया है उसको पालन करने, तुम्हारी माता ने जो मार्ग प्रदर्शन किया है, कौन सा मार्ग, भक्ति का मार्ग, तो वही तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मार्ग। भगवान वासुदेवस्तम भजतं प्रवणात्मना। और यदि तुम भगवान की कृपा को प्राप्त होना चाहते हो तो वही भगवान वासुदेव कृष्ण को एकात्म चित्त में, एकाग्र चित्त में उनका ही भजन करो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए श्रेयस मार्ग। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम ज इच्छे श्रेय आत्मन एकं एव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवन। इसलिए व्यक्ति संसार में जो भी कामना करता हो, धर्म की कामना करता है, अर्थ की कामना करता है, धर्म अर्थ काम की कामना करता है या मोक्ष की कामना करता है, इसको चतुर्वर्ग कहा गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग है, और व्यक्ति इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति में जीवन की सिद्धि मानता है। यदि कोई इस चतुर्वर्ग को प्राप्त हो जाता है वो सोचता है कि अपना जीवन सफल हो गया, किंतु ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नारद मुनि कह रहे हैं कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति या जो भी इच्छा या कामना व्यक्ति की है केवल भगवान हरि के चरण की सेवा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति की जो भी कामना है हर कामनाओं की पूर्ति भगवान के सेवा से हो सकती है। तत्तात्गत भद्रंते जमुनायास्तटं सुचि पुण्यं मधुबनं जत्र सान्निध्यं नित्यदाहरे। क्योंकि ध्रुव महाराज अति शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त होना चाहते थे, इसलिए नारद मुनि ने कहा कि बस तुम यदि भगवान की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होना चाहते हो तो तुम्हें यमुना के तट पर जाना है जहां मधुबन है। तो जो ब्रज भूमि है वहां पर ऐसे बहुत सारे वन है, वन उपवन है, किंतु द्वादश वन प्रसिद्ध है ब्रज भूमि में। यमुना के पूर्वी तट पर 5 वन प्रदेश है और पश्चिमी तट पर 7 वन प्रदेश है, इस प्रकार द्वादश वन प्रसिद्ध है। तो यमुना के पश्चिमी तट पर ये मधुबन स्थित है। तो ये मधुबन मथुरा के पास ही है, अभी जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे वो स्थान अभी भी है। कोई वृंदावन जाए तो वहां उस स्थान का दर्शन कर सकता है। तो नारद मुनि ने मधुबन में भेजा ध्रुव महाराज कि यमुना के तट पर जो मधुवन है, हे ध्रुव तुम वहीं पर जाओ, पुण्यं मधुवन यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। और उस मधुवन को क्यों भेजा नारद मुनि ने? इसलिए भेजा कि उस मधुवन जो है वहां पर भगवान हरि का सान्निध्य तुम नित्य प्राप्त कर सकते हो, अर्थात भगवान हरि अर्थात कृष्ण मधुवन में नित्य निवास करते हैं। ये मधुवन एक विशेष वन है, किंतु भगवान ने ऐसे तो वृंदावन में या ब्रज भूमि में नित्य निवास करते हैं, वो उनकी अपनी भूमि। भगवान कृष्ण जब धरती पर अवतरित होते हैं, अपने धाम से आते हैं धरती पर, तो उनका धाम भी उनके साथ आता है। इसलिए जो ब्रज भूमि है, वृंदावन की भूमि है, ये भौतिक जगत की नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की भूमि है, दिव्य भूमि है। तो आप सोचेंगे कि हम यहाँ जो कुछ भी देखते हैं वृंदावन में भी ऐसा ही देखते हैं, कोई तो अंतर दिखाई नहीं पड़ता कि ये दिव्य भूमि है और ये भौतिक जगत है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, उस समय वृंदावन या ब्रज भूमि अपने स्वरूप में स्थित थी। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है वृंदावन का, यमुना का, तो भगवान की लीला के समय वृंदावन उसी स्वरूप में था, किंतु भगवान जब अंतरहित हो गए, उनकी लीला समाप्ति के पश्चात अपने धाम में चले गए, तो जो वृंदावन की भूमि है उस पर माया का एक आवरण छा गया। अब जब हम जाते हैं वृंदावन, जो वृंदावन हम देखते हैं उसके ऊपर माया का आवरण है। वस्तुतः जो दिव्य वृंदावन है हम उसको उसका दर्शन नहीं कर पाते, वो आच्छादित है। किंतु जो व्यक्ति अपनी भक्ति के द्वारा दिव्य दृष्टि को वर्धित किया है, प्रेममय दृष्टि को वर्धित किया है, वही भगवान के स्वरूप को और वृंदावन के स्वरूप को वृंदावन में दर्शन अभी भी कर सकता है, क्योंकि भगवान वहां नित्य निवास करते हैं। वृंदावनं परित्यज्य पादं एकं न गच्छति, कि भगवान स्वयं कहते हैं कि वृंदावन को त्याग कर एक पग भी मैं बाहर नहीं जाता, नित्य निवास करते हैं। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम मधुवन में जाओ, यमुना के तट पर जो मधुवन है वहीं पर जाओ, वहीं भगवान नित्य निवास करते हैं। इसका अर्थ है कि भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए अति शीघ्र यदि हम वृंदावन में भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति कहीं भी की जा सकती है, किंतु भक्ति का जो फल यदि हम अति शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वृंदावन में जब हम भक्ति का आचरण करते हैं तो हर साधन का फल हजारों गुना हो जाता है। यहां उसी साधन का जो फल हम प्राप्त करते हैं, वृंदावन में उसी साधन का फल हजारों गुना अधिक है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं ध्रुव महाराज से कि तुम यदि अति शीघ्र फल प्राप्त होना चाहते हो, भगवान की कृपा प्राप्त होना चाहते हो, तो तुम्हें मधुवन में जाना चाहिए, वहीं तपस्या करना चाहिए। पुनः कहते हैं, स्नातानुसेवन तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्ता उचितानि निवसन आत्मनं कल्पितासन। तो कैसे तपस्या करनी है नारद मुनि अब बता रहे हैं कि पहले तो मधुवन में करना है तपस्या, और स्नातानुसेवनं तस्मिन् कालिंदं सलिलेशिले, जो कालिंदी अर्थात यमुना नदी है उसका जल पवित्र है, स्वच्छ है और मंगलमय है, क्योंकि यमुना का जल इस भौतिक संसार का जल नहीं है। जिस प्रकार गंगा नदी का जल ये भी भौतिक संसार का जल नहीं है, गंगा नदी का जल ये कारण सागर का जल है जो भगवान के चरण कमल का धोते हुए वही जल यहां प्रवाहित हुआ है गंगा के रूप में। इसलिए भगवान का चरण धौत जल है गंगा जी, ये साधारण जल नहीं है। और वैज्ञानिकों ने देखा भी है कि साधारण जल हम दो चार दिन रखेंगे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाता है जल, हम उसको पी नहीं सकते। किंतु गंगा का जल हम वर्षों रखेंगे, कई वर्ष तक, फिर भी वो जल नष्ट नहीं होता है या उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये प्रमाण है कि गंगा का जल कितना शुद्ध है। उसी प्रकार यमुना का जल भी है, क्योंकि यमुना जो है ये गोलोक वृंदावन से ही आई है। वृंदावन धाम, यमुना, गोवर्धन, ये सब गोलोक वृंदावन से आए, ये भौतिक संसार के नहीं है। इसलिए यमुना का जल भी पवित्र है, मंगलमय और स्वच्छ है। अब आप जाएंगे यमुना का जल उतना स्वच्छ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सब जितने भी शहर में होकर यमुना नदी प्रवाहित होती है, शहर का जो ड्रेनेज ड्रेन का जल यमुना में डाल देते हैं, यमुना को गंदा कर देते हैं, ये मनुष्य कृत है। किंतु हम लोगों ने देखा है यमुना का जल, हम जब 81 साल में गए थे वृंदावन, उस समय इस्कन में जन्म किया था, तो उस समय हम जाते थे यमुना में स्नान करने के लिए, यमुना का जल बहुत स्वच्छ था। आप ऊपर से नीचे क्या पड़ा है यमुना के जल के भीतर आप देख सकते हैं, इतना स्वच्छ था यमुना का जल। और हम लोग स्नान करते थे यमुना में और यमुना का जल ऐसे पी लेते थे यमुना में स्नान करते समय, इतना सुंदर पवित्र जल था। तो ये मान लीजिए 40 वर्ष के पहले की बात हम कह रहे हैं, तो उसके पहले तो यमुना का जल और भी स्वच्छ होगा। और उस समय जो वृंदावन का दृश्य आज आप देख नहीं सकते, आजकल तो सब बिल्डिंग्स बन गए हैं, उस समय बहुत सुंदर लगता था वृंदावन, चारों ओर घन जंगल था, वन था। जो भी हो, समय के परिवर्तन के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि यमुना के जल में 3 बार स्नान करना है, ये तपस्या का नियम बता रहे हैं कि 3 बार प्रतिदिन स्नान करना है, त्रिकाल संध्या में, प्रातः काल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, और दोपहर के समय 12 बजे करीब मध्याह्न, और संध्या के समय सूर्यास्त के समय, ये 3 बार स्नान करना है। और हम जब स्नान करते हैं तो बाह्य रूप से हमारा शरीर शुद्ध होता है, इसलिए तपस्या करने के लिए शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है, और मानसिक शुद्धि के लिए नारद मुनि बताएंगे अब मानसिक शुद्धि कैसे होगी। अब शरीर की शुद्धि के लिए पहले बता रहे हैं कि कैसे शरीर को शुद्ध करना है। तो दिन में 3 बार यमुना के जल में स्नान करना, और कृत्वा उचितानि निवसन आत्मनः कल्पितासनः, और स्नान करने के उपरांत कृत्वा उचितानि, जो उचित कार्य है अर्थात सूर्य नमस्कार आदि जो उचित कार्य है उसको भी करना है। स्नान करने के बाद साधारण रूप से सूर्य नमस्कार लोग करते हैं और सूर्य को जल देते हैं, क्योंकि जो सूर्य है ये भगवान के प्रतीक है, इसलिए संसार में भगवान सूर्य के रूप में दृष्टिगत होते हैं, सूर्य नारायण, तो उनको नमस्कार करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को नमस्कार करना आवश्यक है, या अन्य देवताओं को भी हम नमस्कार करके उनकी कृपा भिक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज अब तपस्या करने जा रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए देवताओं की अलग रूप से आराधना नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रणति आदि प्रणाम आदि करके उनकी कृपा भिक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति कोई तपस्या करने जाता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, कभी कभी ये देवता लोग कुछ बाधा उपस्थित कर देते हैं, और विशेष रूप से इंद्र जब कभी मुनि ऋषि तपस्या करते हैं तो उनको भय छा जाता है उनके मन में, तो इंद्र सोचते हैं कि ये व्यक्ति तपस्या करके हमारा इंद्रपद ले लेगा, इसलिए वो बाधा डालते हैं तपस्या में। तो भगवान के लिए तपस्या करने के लिए भक्तों को सभी से आशीर्वाद ग्रहण करना आवश्यक है, सबको प्रणाम करना चाहिए, सभी का आशीर्वाद चाहिए, तो फिर ये लोग बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे भक्ति मार्ग में। तो कृत्ता उचितानि निवसन आत्मनः कल्पितासन, और इस प्रकार अपना स्नानादि कर्म समाप्त करके ध्रुव तुम्हें उचित आसन में बैठना है, कुशासन में बैठना है तपस्या करने के लिए। प्राणायाम त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोमय, और उसके पश्चात जब आसन में पहले बैठना है उसके बाद क्या करना है ना, प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये प्राणायाम वायु को नियंत्रित प्राणायाम में किया जाता है, जो श्वास वायु है हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो प्राणायाम में ये श्वास वायु को नियंत्रित किया जाता है, और जब श्वास वायु नियंत्रित हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, तो मन को स्थिर करने के लिए ये प्राणायाम की आवश्यकता है, क्योंकि मन यदि स्थिर नहीं होगा तो हम ध्यान कैसे भगवान का कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम त्रिवृत्तिया तीन प्रकार के हैं, पूरक रेचक कुंभक, तीन प्रकार के प्राणायाम है। तो नारद मुनि कह रहे हैं तो ये तीन प्रकार का प्राणायाम करना है, और इस प्रकार प्राणायाम करके प्राण इंद्रिय और मन को नियंत्रित करना है, क्योंकि ये इंद्रियां और मन सदा सर्वदा विषय भोग की ओर दौड़ते हैं, और जब तक मन विषय भोग की ओर दौड़ेगा तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ये आवश्यक है कि प्राणायाम किया जाए, और उसके साथ साथ शनै विदस्य अभिधायत मनसा गुरुणां गुरु, धीरे धीरे इंद्रिय विषयों का त्याग करके जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो उस मन से ध्यान करना है, और ध्यान किसका करना है, गुरुणां गुरु अर्थात गुरुओं के जो गुरु हैं, परम गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु हैं, और दूसरे गुरु लोग कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण मूल गुरु है क्योंकि वही शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान उपदेश प्रदान करते हैं ब्रह्मा के माध्यम से। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, और इस प्रकार कैसे ध्यान करना है वो भी बता रहे हैं कि भगवान के रूप का कैसे ध्यान करना है। आजकल बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं किंतु किसका ध्यान करना है उनको पता नहीं। कोई शून्य का ध्यान करता है और कोई ज्योति का ध्यान करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए कोई ज्योति का ध्यान करें कोई शून्य का ध्यान करें, इस प्रकार समय नष्ट करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं भगवान का सुंदर रूप है। और नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जो सारे संसार में भ्रमण करते हैं, केवल संसार में नहीं वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते हैं नारद मुनि। अब नारद मुनि ध्रुव महाराज को जो उपदेश दे रहे हैं, ये भगवान का ध्यान करने का उपदेश दे रहे हैं, भगवान के रूप का वर्णन करने जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि नारद मुनि जब वैकुंठ जाते हैं वहां भगवान का दर्शन करते हैं, और नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान के रूप का जो वर्णन कर रहे हैं ध्रुव महाराज के सामने, तो नारद मुनि ने भगवान के जिस रूप का दर्शन किया है उसी रूप का वर्णन कर रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत रूप का वर्णन नहीं कर रहे नारद मुनि, उन्होंने भगवान को देखा है और जिस रूप में देखा है उसी का वर्णन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भगवान को कभी जीवन में देखा ही नहीं है वही लोग कहते हैं भगवान निराकार है, क्योंकि उन लोगों ने देखा ही नहीं है भगवान को, भगवान के संबंध में उनको कोई धारणा ही नहीं है। किंतु जिन लोगों ने भगवान को देखा है, सभी लोग ब्रह्मा से आरंभ करके ब्रह्मा नारद व्यास जितने भी महात्मा जन है, इन लोगों ने भगवान को देखा है इसलिए भगवान के रूप का वर्णन किया कि भगवान कैसे दिखता है। तो नारद मुनि अब बता रहे हैं ध्रुव महाराज को, भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप को अपने ध्यान में, जिस रूप का ध्यान करने के लिए नारद मुनि कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि मन को केंद्रित करके कैसे भगवान के रूप का ध्यान करना है। तो कहते हैं प्रसादाभिमुखं सत्सत् प्रसन्न वदने क्षणम्। कहते हैं कि भगवान का जो वदन अर्थात मुखमंडल है, ये मुखमंडल हर समय भगवान का मुख प्रसन्न मुख है, सदा सर्वदा भगवान हंसते रहते हैं। आप दूसरे देवी देवताओं को देखेंगे जैसे दुर्गा या काली, वो उनका मुख कैसा है, वो क्रोधित अवस्था में है, क्रोध से मुखमंडल जैसा दिखता है। किंतु भगवान का मुख जो है हर समय भगवान हंसते रहते हैं, प्रसन्न मुख है। और जो व्यक्ति हर समय हंसता रहता है उस व्यक्ति को कोई देखे तो वो भी हर्षित हो जाएगा, स्वाभाविक है। इसलिए भगवान के मुखमंडल का जो दर्शन करता है वो व्यक्ति आनंद को प्राप्त हो जाता है, भगवान के प्रसन्न बदन को देखकर। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान का मुखमंडल सदा सर्वदा, कभी भगवान के मुखमंडल पर चिंता की रेखा दृष्टिगत तो नहीं होती, भगवान कभी चिंतित नहीं दिखाई पड़ते हैं कि संसार में ये हो गया वो हो गया, भगवान चिंतित तो नहीं होते, हर समय हंसते रहते, उनको कोई चिंता नहीं। और जब मुखमंडल प्रसन्न है तो दृष्टि भी इक्षण जो है वो दृष्टि भी प्रसन्न दृष्टि होगी। कोई क्रोधित दृष्टि में देख सकता है, अगर व्यक्ति क्रोधित है तो उसकी दृष्टि भी क्रोधित दृष्टि होगी और उसकी आंखें लाल लाल हो जाएगी क्रोधित होने के कारण। किंतु भगवान का मुखमंडल प्रसन्न है, सदा सर्वदा वो प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि भी प्रसन्न दृष्टि है। जिस पर दृष्टिपात करते हैं उस पर कृपा करते हैं भगवान, ये भगवान की कृपा दृष्टि है। सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुर सुंदरम। और भगवान की नासिका जो है, नाक है, बहुत सुंदर है, उन्नत नासिका, नाक उठा हुआ तो बहुत सुंदर लगता है, दबे हुए नाक वाले इतना सुंदर नहीं लगते। तो भगवान का नाक बहुत सुंदर है, उन्नत नासिका, सुभ्रुवम, और भौवें भी बहुत सुंदर हैं, धनुष की तरह भौवें। और पुनः कहते हैं चारु कपोलो सुर सुंदर, चारु कपोल, चारु अर्थात मनोहर सुंदर, कपोल गाल है, भगवान के गाल जो हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं। जब भगवान कानों में मकर कुंडल पहनते हैं तो उनके कपोलों में, गालों में ये प्रतिबिंबित होता है कुंडल, बहुत सुंदर लगता है। और इस प्रकार सुरा सुंदरम, भगवान कृष्ण देवताओं से भी अधिक सुंदर है, देवता लोगों को सुंदर कहा जाता है, कि देवता लोग बहुत सुंदर लगते हैं, किंतु भगवान कृष्ण सभी से सुंदर है, सुरा सुंदरम। तरुणंग रमणीय अंगम, और उनके जो अंग प्रत्यंग हैं सदा सर्वदा तरुण अवस्था में ये अंग प्रत्यंग रहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति तरुण अवस्था में है, युवावस्था में है, उसके अंग प्रत्यंग सुंदर लगते हैं। अगर यदि व्यक्ति वृद्ध हो गया हो उसके अंग प्रत्यंग उतना सुंदर नहीं लगते। तो भगवान नवजौवनंच सदा सर्वदा युवावस्था में रहते हैं, कभी वृद्ध नहीं होते। तो भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक लीलाएं की थी, जब अवतरित हुए थे द्वापर युग में 125 वर्ष तक भगवान ने लीलाएं की थी, किंतु भगवान कभी वृद्ध नहीं हुए, सदा सर्वदा युवावस्था में ही रहे। इसलिए हम भगवान का कभी फोटो देखते हैं, कभी भगवान को वृद्ध के रूप में नहीं देखते हैं, हर समय युवावस्था में, इसलिए बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। अरुणोष्ट इक्षण अधरम, और भगवान के जो होंठ हैं और इक्षण दृष्टि है, नेत्र है, और अधर, ये सब अरुण वर्ण के हैं, लाल वर्ण है। आजकल लोग और विशेष रूप से माताएं होंठों को लाल करने के लिए लिपस्टिक लगाती हैं, क्योंकि उनके होंठ लाल नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण के होंठ जो हैं स्वाभाविक रूप से लाल हैं, अरुण आधार हैं, उनको लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वो सुंदर लगते हैं भगवान कृष्ण, और उनके नेत्र भी लालिमा युक्त है, अरुणिमा युक्त है। प्रणता शयनं नम्नम शरण्यं करुणान्नवम्। और भगवान इस प्रकार है, ध्रुव महाराज के सामने नारद मुनि ये वर्णन कर रहे हैं कैसे भगवान का ध्यान करना है, इसी रूप में ध्यान करना है भगवान का। तो प्रणता शयनम, जो लोग भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिए, शरणागत है, तो भगवान शरणागत वत्सल है, जो शरणागत व्यक्तियों को आश्रय देते हैं, प्रणताश्रय, शरणागतों के परम आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। और शरण्यं करुणान्नवम्, और भगवान करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, वो सभी के शरण लेने योग्य हैं और कृपा के सागर हैं, वो सभी पर कृपा कर सकते हैं भगवान, क्योंकि कृपा के सागर हैं, कृपा की कोई कमी नहीं है भगवान के पास। शिवस्थंकम घनश्यामं पुरुषं बनवालिनम्। और भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह रहता है। ये श्रीवस्त्र चिन्ह क्या होता है? श्री अर्थात लक्ष्मी जी, वस्त्र अर्थात प्रिय, तो लक्ष्मी का प्रिय चिन्ह है श्रीवस्त्र चिन्ह, अर्थात लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल पर नित्य निवास करती है ये श्रीवस्त्र चिन्ह के रूप में। ये श्रीवस्त्र चिन्ह एक स्वर्ण की लकीर जैसा है भगवान के वक्षस्थल पर, जहां लक्ष्मी देवी नित्य निवास करती है भगवान के वक्षस्थल पर। तो श्रीवस्थंक, तो भगवान का जब ध्यान करेंगे ध्रुव महाराज, तो ऐसा ध्यान करेंगे भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह है, घन श्याम, और भगवान का रूप कैसा है? श्याम रूप है, घन श्याम, घन अर्थात मेघ बादल। आप लोगों ने आषाढ़ महीने में देखा होगा जब प्रथम बादल आते हैं, जलपूर्ण बादल, उसका जो वर्ण है, वस्तुतः बादल के वर्ण से भी भगवान का वर्ण और तेजोदीप्त है, किंतु संसार में भगवान के रूप का रूप की तुलना करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, इसलिए घन अर्थात बादल के साथ तुलना की गई है, कि बादल के समान भगवान का सुंदर रूप है, श्याम रूप है, किंतु श्याम रूप से तेज निकलता है, बादल से तेज नहीं निकलता, किंतु भगवान के रूप से तेज निकलता है। तो अंधकार गृह में यदि भगवान खड़े हो जाएंगे तो वो गृह आलोकित हो जाएगा, इतना तेज निकलता है उनके शरीर से। पुरुषं वनमालिनम्, और भगवान पुरुष हैं, परम पुरुष, वस्तुतः भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं और सब सारे जीव स्त्रियां ही हैं, चाहे वो पुरुष स्त्री जो भी हो सब स्त्रियां ही हैं, क्योंकि सभी भगवान की प्रकृति है। भगवान एकमात्र परम पुरुष और भोक्ता, हम उनके भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं है, और हमारा दुख इसी में है कि हम भोग्य होकर अपने को भोक्ता मानते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, यही हमारे दुख का कारण। हमारा कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, उनको भोग प्रदान करना, क्योंकि वो परम भोक्ता है, किंतु हम भगवान को भोग प्रदान करने के स्थान पर हम भगवान का स्थान ले लेते हैं और स्वयं भोग करना चाहते हैं। ये हमारे दुख का मूल कारण। तो भगवान परम पुरुष हैं और बनमालिनम, और भगवान वन की मालाओं से सुशोभित होते हैं, अर्थात सद्य प्रस्फुटित पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित होते हैं। तो भगवान की जो माला है इसलिए उसको वैजयंती माला कहा जाता है। पांच रंगीन पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की माला है वैजयंती माला। तो भगवान सद्य पुष्पों की माला धारण करते हैं, वन में जो पुष्प प्रस्फुटित होते हैं उन्हीं से जो माला बनाया जाता है उसको धारण करते हैं, बाजार के पुष्पों से नहीं है। बाजार के पुष्प दो तीन दिन चार दिन के होते हैं, उसमें उससे बदबू आती है, दुर्गंध आता है। शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम, और भगवान के चार हाथ हैं, ये विष्णु रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐसे भगवान के रूप का ध्यान करना है। ध्रुव महाराज कह रहे नारद मुनि, किरीटीनं कुंडलीनं केयूर वलयान्वितम, और भगवान अपने मस्तक में सोने के मुकुट पहने हुए हैं जो मणियों से युक्त है, और कुंडलीनं कानों में मकर कुंडल धारण किए हैं, और सब सोने के बने हुए हैं। मकर कुंडल इस सोने के अलंकार धारण किए हैं। केयूर वलयान्वितम, और भगवान यहां बाजूबंद पहने हुए हैं सब सोने का, बलय बला पहने हुए हैं सोने का। कौस्तुभाभरणम ग्रीवम पीत कौशेय वाससम, और कंठ में कौस्तुभ मणि है धारण किए हुए, और पीत वस्त्र रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। तो भगवान जानते हैं उनके रूप के अनुसार कौन सा वस्त्र उनको सुंदर लगेगा। उनका वर्ण क्या है, श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण में ये पीला वस्त्र बहुत सुंदर लगता है, जो पीला रेशमी वस्त्र ये बहुत सुंदर लगता है, इसलिए भगवान पीला वस्त्र पहनते हैं। कांचे कलाप पर्यस्तम लसत कांचन अनुपुरम, तो कटी देश में भगवान सोने के केयूर ये पहने हुए हैं, जो घंटी बजती है ना सोने की घंटी, सब कटी देश में लगे हुए हैं। तो भगवान कटी देश में इस प्रकार धारण किए हुए हैं, और चरण में सोने के नूपुर धारण किए हुए हैं, इसलिए भगवान जब चलते हैं तो रुंझुन रुंझुन इस ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सुंदर शब्द उत्पन्न होती है। दर्शनीयतम शांतम मनोनयन वर्धनम, तो इस प्रकार भगवान का जो रूप है ये मन और नयन नेत्र को अत्यंत मनोहर लगते हैं, मन और नेत्र के आनंद में वृद्धि करता है भगवान के सुंदर रूप, और ये संत रूप भगवान का। पदभ्यांग नख मणि श्रेण्यंग बिलसद भ्यांग समस्तम हृत्कर्ण अवहृत पद्म करने का दृष्ण आक्रम्यात्मनि अवस्थितम। तो ध्रुव महाराज को बता रहे नारद मुनि, जब इस प्रकार भगवान का ध्यान करना है तो अपने हृदय कमल में भगवान को धारण करना है, भगवान खड़े हैं हृदय कमल में, तो उनके चरण चरणों में जो उनकी नाखून है, उनके ये नाखून भी बहुत सुंदर लग रहा है, उससे भी ज्योति निकल रही है नाखूनों से। तो ऐसे ध्यान करना है कि भगवान हमारे हृदय कमल में दंडायमान है, खड़े हैं, और उनके चरण कमल ऐसे सुंदर हैं, उसमें जो नाखून है उससे ज्योति निकल रही है, चरण में नूपुर पहने हुए हैं, फिर पूरा शरीर का जो वर्णन उन्होंने दिया है, इस प्रकार भगवान का ध्यान करना। स्मयमानं अभिध्यायत सानुरागावलोकनम नियते नैक भूतेन मनसा बरदर्शवम्। तो इस प्रकार जो भगवान स्मित हास्य कर रहे हैं और प्रसन्न दृष्टि से देख रहे हैं, इस प्रकार भगवान का एकाग्र चित्त में ध्यान करना है, जो बरदर्शव जो दान देने में या बर देने में समर्थ है और बर देने में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्यापरयातुर्नं संपन्नं निवर्तते। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भौतिक दोष से मुक्त होकर भगवान का ध्यान करता है, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करता है, तो व्यक्ति पुनः इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो ये ध्यान करने की विधि नारद मुनि ने बता दी ध्रुव महाराज को। अब ध्यान के साथ और क्या करना है ध्रुव महाराज को, ये भी बता रहे। कहते हैं जपस्य परम गुह्य श्रेयतांग मेनुपात्मज जंग सप्तरात्र प्रपठन पुमान पश्यति खेचराम। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अब ध्रुव मैं तुम्हें परम गुह्य जप का जप की जो विधि है उसको मैं बता रहा, और क्या जप करेगा वो मंत्र भी बता रहा, और इस मंत्र को जप करने से, जप तीन प्रकार के होते हैं, वाचिक और उपांशु और मानसिक जप। वाचिक जप जब हम बोलते हैं मंत्र तो दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, किंतु उपांशु जप जब होता है उसमें हम बोलते हैं केवल हम ही सुनेंगे, दूसरा कोई सुन नहीं सकता, और जो मानसिक जप है उसमें कोई ध्वनि नहीं निकलती है, मन ही मन वो जप होता है मंत्र का जप। तो यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को वाचिक जप करने के लिए बोल रहे हैं, और जो मंत्र आप देंगे उसको वाचिक उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? यंग सप्तरात्रं प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा। जिस मंत्र को पाठ करने से अर्थात वाचिक रूप से जप करने से सात रातों में, सात रात्रि में व्यक्ति आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन कर सकता है इस मंत्र के जप से, नारद मुनि कह रहे हैं। अब ये मंत्र बता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रणानेन देवस्य कुरियात द्रव्य द्वादशाक्षर मंत्र। तो ये भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सत्ययुग का मंत्र है, क्योंकि ध्रुव महाराज सत्ययुग के थे तो उस समय ये मंत्र दिया गया था, नारद मुनि ने दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा देवस्य कुरियात द्रव्यमयी बुध सपरजंग विविधय द्रव्य देश काल विभागवत। तो कहते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए द्रव्यमयी भगवान की मूर्ति की पूजा करना है। देश काल और पात्र के अनुसार भगवान की मूर्ति की पूजा करना है, केवल मंत्र जप करना नहीं। पहले भगवान के रूप का ध्यान करना है, मंत्र जप करना है और भगवान की मूर्ति की पूजा भी करनी है। ये तीनों बात बता रहे, ये भक्ति की विधि है कि हर भक्त भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए और मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, जैसे नारद मुनि बता रहे हैं। और भगवान की मूर्ति कई प्रकार की हो सकती है, आठ प्रकार की बताया गया है। एक तो धातु से हम भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, सोने से, चांदी से या किसी धातु से बना सकते हैं भगवान की मूर्ति। काष्ठ से, लकड़ी से बना सकते हैं भगवान की मूर्ति। पाषाण, पत्थर से बना सकते हैं। मणिमय, मणियों से बना सकते हैं भगवान की मूर्ति। चित्रपट, जो पेंटिंग करते हैं भगवान की, भगवान के रूप की पेंटिंग जो है, ये भी एक मूर्ति के समान है। हम पूजा कर सकते हैं पेंटिंग या चित्रपट जो भगवान के, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर मूर्ति पूजा नहीं कर सकते तो चित्रपट की भी पूजा कर सकते हैं। मनोमय और मूर्ति का, मिट्टी से बना हुआ बनी हुई मूर्ति भगवान की, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और ये सब संभव नहीं है तो जल में अपने हाथ से मूर्ति आंक करके भी पूजा कर सकते हैं जल में। और जल में भी संभव नहीं हुआ तो मनोमय, अपने मन में भगवान की मूर्ति की धारणा करना और उनकी पूजा करना, मानस पूजा जिसको बोलते हैं, भगवान की मूर्ति की चिंता करके मन में सारे द्रव्यों को अर्पित करना, मानसिक पूजा कर। फूल पास में नहीं है, मन में सोचेंगे हम यहाँ यहीं से फूल तोड़ते हैं, लाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं और भगवान को अर्पित करना, ये मानस पूजा है। पास में भोग नहीं है, मानस में भोग लगा सकते हैं भगवान को। तो ये हर तरह की सुविधा हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है शास्त्रों में। चाहे व्यक्ति कहीं भी हो वो भगवान की पूजा, ध्यान और मंत्र जप कर सकता है। ये कोई बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, हमने जप नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं सकता। ये शास्त्रों में देश काल पात्र के अनुसार ये सब करने के लिए विधान उपलब्ध है। तो नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को इस प्रकार करने के लिए। सलिले सूची भीर माल्यर वन्य मूल फलादि सस्तंकुर सुके तुलस्या प्रिय। तो स्वच्छ जल या शुद्ध जल से भगवान की पूजा करना आवश्यक है। जल को शुद्ध करना, या शुद्ध जल यदि गंगा या जमुना का जल प्राप्त हो तो उससे भगवान की पूजा करनी चाहिए। और यदि गंगा जमुना का जल प्राप्त न भी हो तो साधारण स्वच्छ जल, शुद्ध जल को लेकर हम मंत्र से गंगा, यमुना, गोदावरी जितने भी तीर्थ हैं उनको बुलाते हैं मंत्र के द्वारा उस जल में प्रवेश करने के लिए, तब वो तीर्थ जल बन जाता है। उसी से भगवान की हम पूजा कर सकते हैं। गंगेश यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि। तो ये मंत्र के द्वारा भी हम तीर्थ जलों को ला सकते हैं। तो और जो भी वन में, क्योंकि ध्रुव महाराज वन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं वन में जो भी फल मूल उपलब्ध होगा उसको लाकर भगवान को भोग लगाना। और जो नव दुर्बा है और विशेष रूप से तुलसी जो भगवान के अति प्रिय है, तुलसी को अर्पण करना यह आवश्यक है। हम भगवान को जो भी फल मूल या भोग लगाते हैं उसमें तुलसी डालना आवश्यक है, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। इसे तुलसी डालकर हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि तुलसी भगवान का अति प्रिय है, इसलिए तुलसी को अर्पण करना चाहिए। लब्धा द्रव्य मयी अर्चन क्षिति अम्बादी सुहर्षित अभृत आत्मा मुनि संत सदभागा मितवन्न हो। तो जो भी द्रव्य उपलब्ध है स्थान काल पात्र के अनुसार, तो उस द्रव्य को लेकर जो भी मूर्ति उपलब्ध है उन मूर्ति की पूजा करना है, और इस प्रकार संत भाव से तुम्हें मितव भूख अर्थात जो भी वन में उपलब्ध है उसी को खाद्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये तपस्या का नियम बता रहे हैं नारद मुनि। स्वच्छावतार चरित अचिंत निजमायया करिष्यति उत्तम श्लोक तद्ध्यायते हृदयंगम। और नारद मुनि पुनः कह रहे हैं कि यह बस ये विग्रह आराधना और मंत्र जप के अतिरिक्त भगवान के विभिन्न अवतार और उनकी मनोहरी लीलाओं का ध्यान करना है। ध्यान करते से परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता कामंत्र हृदय नैव प्रयुंजान मंत्र मूर्ते। तो इस प्रकार जैसे महाजन गण जिस प्रकार पूजा विधि हमें प्रदान की है उसी प्रकार पूजा विधि से यदि कुछ उपलब्ध नहीं है तो हम मानस में भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, किंतु यदि सब कुछ उपलब्ध है तो उस समय हम मानस पूजा नहीं कर सकते। जो वस्तु उपलब्ध है उसको लेकर पूजा करें, जब उपलब्ध नहीं है तब मानस पूजा करेंगे। तो इस प्रकार जब नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं तो नारद मुनि का उपदेश प्राप्त होकर ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई नारद मुनि की, और परिक्रमा लगाकर हरिचरणांकित मधुबन में जाने के लिए उद्यत हुए। और जब ध्रुव महाराज मधुबन में पहुंच गए, जब पहुंचे मधुबन में तो जाकर पहले जमुना में स्नान किया, अपने को पवित्र किया, और उसी रात को उसी मधुबन में जंगल में उन्होंने उपवास किया, कुछ खाया नहीं। ये तीर्थ यात्रा की विधि है। जब हम तीर्थ में पहुंचते हैं तो उस दिन तीर्थ जल में स्नान करना और उपवास रहना, यह तीर्थ की विधि है। तो ध्रुव महाराज ने ऐसा ही किया, उन्होंने यमुना जल में स्नान किया और हो सकता है कि रास्ते में कुछ खाए नहीं होंगे, फिर भी उस दिन उन्होंने उस रात्रि वो उपवास में रहे, कुछ खाए नहीं। और दूसरे दिन से नारद मुनि के बताए मार्ग पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। तो कल हम श्रवण करेंगे कि ध्रुव महाराज ने किस प्रकार कठिन तपस्या की, और कैसे 6 महीने के भीतर भगवान को प्राप्त हो गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ध्रुव महाराज की कठोर तपस्या, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। भगवान को संतुष्ट करने के लिए 5 वर्ष की आयु वाले बालक के मन में इतना दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने कठोर व्रत आचरण किया और 6 महीने के भीतर भगवान के दर्शन हुए और उनका उनसे वरदान प्राप्त हुए। तो कल हम चर्चा करेंगे इसके संबंध में। हमारे पास ये प्रसंग बहुत बड़ा प्रसंग है, ये 3-4 दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, फिर भी कल हम ध्रुव महाराज के भगवान के दर्शन और हो सकता है तो उनकी स्तुति, जो भगवान के प्रति स्तुति है, प्रार्थना है, उस पर चर्चा कर सकेंगे। हरे कृष्ण। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले हम 5 मिनट भगवान के नाम कीर्तन करेंगे और आप लोग इस नाम कीर्तन में अंश ग्रहण कीजिएगा। हाथ ताली देकर और उच्च स्वर में नाम कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे जय जय शिष्यनिताय की जय जय श्री कृष्ण बलराम की जय जय श्री राधा श्याम सुंदर सगदेवी की जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय जय समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हमारा अति सौभाग्य है कि परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज के मुखारविंद से इस भागवत को एज इट इज रूप में श्रवण कर रहे हैं। कलयुग में भागवत तो हम बहुत सुन रहे हैं, परंतु श्री प्रभुपाद जी चाहते थे कि जिस रूप में भागवत कही जाए वही रूप में महाराज हमारे सामने भागवत को प्रस्तुत कर रहे हैं और एक एक शब्द एक एक श्लोक के द्वारा भागवत के श्लोकों के माध्यम से उनके सरल अनुवाद के रूप में हमारे जैसी मंद मति को समझे इसी रूप में इस रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज। ये हमारा सौभाग्य है और इसका हो सके उतने ज्यादा भक्तों को लाभ होना चाहिए, क्योंकि इतना शुद्ध भागवत आपको बहुत कम जगह पर सुनने के लिए मिलेगा। क्योंकि ऐसा शुद्ध भागवत जब कहते हैं तो सुनने वाले भी प्रेमी होते हैं, क्योंकि इतने शुद्ध रूप से सुनने वाले के लिए काड़ जो जरूरी है बताने श्रवण कर सकते क्वालिटी लोग ही इस भागवत को सुन सकते हैं। तो तीन दिन से महाराज के मुख से भागवत श्रवण हमें मिल रहा है, मुझे आज लाइव मिला और दो दिन हम मोबाइल में सुन रहे थे, तो ये अच्छा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के हम जहां भी हो वहां पर ये अच्छी तरह सुन सकते हैं। ध्रुव चरित को बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन नारद जी के द्वारा ध्रुव महाराज समझा रहे थे ध्रुव महाराज को। मानसिक रूप से भी भगवान को कुछ अर्पण कर सकते हैं। तो हमें एक मैसेज आया यहाँ से, तो क्या महाराज मानसिक रूप से जप कर सकते हैं? तो उनको मैं महाराज उत्तर दे उससे पहले मैं दे दू, हाँ कर सकते हैं, परंतु अगर मानसिक रूप से आप खा और पी सकते हो तो मानसिक रूप से जप कर सकते हो। अगर मानसिक रूप से आप खा लो और पानी पी लो तो मानसिक रूप से आप जप कर लो, परंतु नहीं, मानसिक रूप से न खाना होता है न पीना होता है, तो हरिनाम जब भी मानसिक रूप से नहीं होता, लाइव बोलना पड़ता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो सुंदर महाराज इस ध्रुव चरित्र की धारा को तीन दिन से प्रवाहित कर रहे हैं। कल हमारे लिए अंतिम दिन है और परसों तो जिनको उड़ीसा भाषा आती है वो सुन सकते हैं। हिंदी में चलो बढ़िया, हिंदी में है तो यहाँ पर नहीं है, अलग जगह पर है प्रोग्राम महाराज का, कल आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। परंतु कल का थोड़ा नोट कर ले, किस प्रकार से हमारा कल का पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 7:30 से 8:30 या 9 बजे तक हम चैतन्य चरितामृत को सुनेंगे 8:30 तक, और महाराज को हम प्रार्थना करते कि आधे घंटे क्वेश्चन आंसर का भी सेशन हो। आप सब तैयार हो प्रश्न पूछने के लिए या फिर प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद जीवन में उतारने के लिए? दोनों के लिए, ठीक है। प्रश्न पूछना भी है और उनका उत्तर भी ले, उन्हें जीवन में उतारना है। तो 7:30 से 8:30 चैतन्य चरितामृत पर क्लास होगा और 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते, पर महाराज का आगे पीछे नहीं होगा, है ना? हमारा सब आगे पीछे होता है, अभी तो घना घना विरला तो अत्यारे होता है, तो था क्या रसो दिखाए अभी अभी आते हैं मगर सूरत में तो लोग कथा कभी नहीं खत्म हो गया। तो महाराज का आगे पीछे नहीं होगा, हम सब परिचित है, परंतु जो राधा कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी टाइम एकदम कट टू कट है, यहाँ शुरू करना है तो शुरू और यहाँ खत्म करना है तो खत्म। बुढ़ा के शुरू का भी टाइम कट टू कट है, पर हम सब टाइम पास वाले हैं इसलिए हमारा कोई भरोसा रहता नहीं, पर श्रवण के पक्के बने, भले हम कथा करने के पक्के न बने पर श्रवण के पक्के बने, क्योंकि श्रवण से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। हम चर्चा कर रहे थे महाराज के साथ, तिलक बढ़िया बनाने से एकदम गले में लटका देते हैं माला, धोती कुर्ता एकदम फ्रेश पहनते हैं, स्त्री टाइट, तो क्या इससे हमारे अंदर भगवान या भगवान की कृपा आ जाएगी? नहीं। अगर भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो श्रवण से ही होगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा शिष्य वही है कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करे, और जो ज्यादा श्रवण करने वाला ही अच्छा शिष्य बन सकता है। अगर हमें अच्छा शिष्य बनना है तो सुनना होगा, तो हम प्रयास करें कि अच्छी तरह से समय से सुने और उनको जीवन उतारने का प्रयास करें। दोपहर को 1 से 2 महाराज का क्लास श्री राधा दामोदर मंदिर जहांगीरपुरा में होगा, तो आप सभी वहां पर महाराज का क्लास सुनने के लिए आ सकते हो। और शाम को महाराज का क्लास 7 से 8:15 बजे तक होगा, ध्रुव चरित्र का अंतिम सोपान अंतिम सेशन होगा, तो आप सभी समय से आइए। और 8 बजे के बाद सबके लिए महाप्रसाद, वो तो ऐसे भी ही रहेगा। तो जो मानसिक रूप से जप करना चाहते हो कल शाम को भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो पुनः एक बार हम आभारी हैं महाराज जी के, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है और इतनी अच्छी तरीके से, यानी जो रसिक है उनको भी मजा आएगा, बाकी तो एम लगेगा आसू मुझी हमारे जेवा तो मनोरंजन वाला है ना, वो बोल जाए, परंतु जो बराबर भक्त है जो वास्तविक सुनना चाहते भागवत को, इनको अच्छी तरह से सुन सकते हैं। हमने हमारा सौभाग्य है कि इतने शुद्ध रूप से भागवत हमें सुनाई जा रही है व्यासपीठ पर से, तो महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। और हमारा सेमिनार भी चल रहा है, आज उनका अंतिम दिन है, 70-80 या 100 दिन नजदीक में ही हमारा जो दूसरा सेंटर है वहां पर ये सेमिनार चल रहा है। कल उन सेमिनार में से जो भक्त माला करेंगे या तो फिर एग्जाम ली जाएगी और उनमें जिनका नंबर आएगा तो महाराज के हाथ से ही उनको सर्टिफिकेट और उनको माला दिया जाएगा। कल वो भी प्रोग्राम है शाम को यहाँ पर। तो आज का महाप्रसाद मास्टर प्रभु की ओर से है, तो हम प्रार्थना करते हैं आज का अमृतमय प्रसाद मास्टर प्रभु यहाँ पर हो तो फास्टर रूप में यहाँ पर आ जाए। और ये पर्दे के पीछे भी बहुत भक्त दिख रहे हैं, उनको निवेदन है कि जब कथा शुरू हो तब पर्दा हटा दो और सब कुछ काम छोड़कर सब कथा में बैठ जाओ, यही सबसे बड़ी महाराज की और भगवान की सेवा होगी। तो जब कथा शुरू हो तो जो मैनेजमेंट के अलावा जो भी हो सब कथा सुनने के लिए बैठे, ऐसा निवेदन है। तीन बार हरि बोल बोल स्वागत करते हैं। हरि बोल। हमारे मास्टर प्रभु एकदम एक्टिव हैं, हर साल महाराज को लाने में उनकी पूरी टीम श्याम प्रभु और जो भी है हमारे यूनिट। तो हम आप सबको निवेदन करते हैं, 10 बज गया है, 10:10 हो गया मास्टर टाइम। कल आप सब, हमें पूरा विश्वास है कि कल आप मानसिक रूप से मंगल आरती नहीं करेंगे। हम आप सबको निवेदन करते हैं कि लाइव आपको मंगल आरती कल करना है, 4:30 बजे यहाँ पर मंगल आरती होगी। आप सभी आमंत्रित हो, समय से आप सब आइए और कल पूरा दिन लाभ लीजिए और ऐसे शुद्ध वैष्णव साधु गुरुजनों का सानिध्य ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो कल पूरा दिन महाराज का हम संग करें ऐसी प्रार्थना है। आप सभी का भी धन्यवाद जो इतने भाव और प्रेम से श्रवण करने के लिए आते हैं। तो आज का इस सत्र को हम यहाँ पर विराम करते हैं महामंत्र।